ओम शांति। दो दिन पहले मुरली में था कि जब किसी के ऊपर ग्रहचारी आती है या ग्रहचारी न आए उसके लिए नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं। तो नवरत्न कौन से होंगे? इन्हीं आदि रत्नों में से होंगे, दीदी दादियों में से होंगे। तो जब उनके संग में रहने का मौका मिलता है या उनके बारे में जानकर उनकी शिक्षाओं के अनुसार हम जब चलते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रहचारी आएगी नहीं, और आई होगी तो खत्म हो जाएगी। तो यही मौका मुझे भी मिला दीदी दादियों के साथ रहने का। और जैसे भाई ने बताया कि मैं अजमेर से ज्ञान में आया, तो अजमेर में उस समय काफ़ी समय तक ट्रेन रुकती थी और आज की तरह ट्रेन फास्ट नहीं होती थी। जब जब दादियाँ दिल्ली जाते थे तो हमें उनसे स्टेशन पर मिलना होता था, क्योंकि आइदर लंच और डिनर हम उनके लिए ले जाते थे। सबसे पहले इस प्रकार की मिलन का मौका मिला दादी गुलजार जी के साथ, जबकि मुझे ज्ञान में मात्र 15-20 दिन ही हुए थे। तो बहनों ने कहा कि वैसे गुलजार दादी को भीड़ पसंद नहीं है, ज़्यादा लोग पसंद नहीं है, इसलिए हम दो भाई और हम साथ में चलेंगे बस। तो दादी जी से मिलना हुआ, दादी को पता चला कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, तो दादी ने सिंपल मिसाल दिया कि जैसे आप कनेक्शन करते हैं तो तार से रबड़ उतारते हैं, वैसे बाबा के ज्ञान में या बाबा को सही अनुभव करने के लिए हमें देहाभिमान को भूल आत्माभिमानी बन रहना है। तो भले वास्तव में ये चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब दादी के मुख से सुना तो बहुत जैसे उसका प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं हम चार धाम यात्रा करते हैं पांडवों में, जिस जिस जगह ब्रह्मा बाबा रहे 10-15 साल ही रहे हो, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव उस धरनी पर भी अभी तक है, इस स्थूल धरनी पर भी ब्रह्मा बाबा के रहने का प्रभाव है। तो जिस रथ में बाप दादा स्वयं आते रहे तो उनकी चैतन्य धरनी पर कितना प्रभाव होगा। मैंने ये देखा 81 या उससे पहले जब हमने कोई स्लाइड शो बनाया था डे ऑफ ब्रह्मा, तो गुलजार दादी का फेस और गुलजार दादी में जब बाबा आते थे तो फेस में बहुत सारे चेंजेस हो जाते थे और महसूस होता था कि जैसे कोई पुरुष ने उस देह को लिया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये अंतर बहुत कम होता गया और कोई समय ऐसा आया कि बाबा बोल रहे हैं या दादी बोल रही है, केवल आवाज़ का ही फर्क होता था, लेकिन वही बोल, वही जो फीलिंग्स, वही ओरा हमें दिखाई देता था। तो दादियों ने अपने ऊपर तो मेहनत की ही होंगी ऑफकोर्स, तब जाके उन्होंने अचीव किया होगा। तो दादियों ने स्वयं पे मेहनत की। 14 वर्ष पहले तो पाकिस्तान से जब आए, उससे पहले का जो उन्होंने 14 वर्ष बठी की, तो किसी ने मनोहर दादी से पूछा था कि आप जब पाकिस्तान में थे तो वहाँ से जब आपको निमंत्रण मिल रहा था इंडिया में आने का तो क्यों नहीं आए? तो जल्दी आ जाना था। उन्होंने कहा कि बाबा से पूछा गया तो बाबा ने कहा कि जो भी आपको पूछता है तो आप बोलो 14 वर्ष का वनवास है, जैसे हमारा वनवास पूरा होगा फिर हम सेवा के लिए आएंगे। तो 14 वर्ष तक उन्होंने अपने को भरपूर किया दादियों ने, बाबा ने उनको इतना जैसे जिसको साधारण भाषा में कहते हैं कूट कूट के भर दिया। तो उन्होंने अपने लिए तो एक संतुष्टता वाला, जैसे कहते हैं ना कि पास मार्क तो ले ही ली थी, तब जाके वो सेवाओं में निकले। उसके बाद उनको हर चीज़ में लगता था कि और जैसे प्लस होता जा रहा है। तो उन्होंने का किसी में भी सेवा करने में भी कोई नाम मान शान का या प्राप्तियों की इच्छाएं नहीं थी, उन्होंने का हमेशा ही दाता का रूप रहा। उनको आता था कि ये नया कुमार आया है तो कैसे हम उसको बाबा की ओर और पक्का करें, है ना। तो जो भी मिलता था और उसको पता चलता था मैं कुमार हूँ, तो कोई भी दादी मिलती थी तो बाबा की दो चार बातें ऐसे सुनाती थी जिससे और आप निश्चय पक्का हो जाए और समर्पण भाव ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इस प्रकार उल्जा दादी से सबसे पहले मिलना हुआ स्टेशन पर, और दूसरी बार स्टेशन से मिलना हुआ दादी दीदी मनमोहिनी जी से। दीदी मनमोहिनी जी के बारे में आपने वैसे तो बहुत सारा कुछ सुना हुआ होगा, उनके अभी मास चल रहा है तो कोई कोई सेंटर पे हर दिन उनकी विशेषताएं सुनाते भी हैं, पांडव भवन में भी सुनाते हैं आजकल। तो दीदियों की विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उतना ही बताऊंगा जो जिसमें मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। तो दीदी ने स्टेशन पर जब मुझे मिले तो पहचान लिया, और उसके बाद हम मिले जयपुर में। जब जयपुर में मेला हुआ तो मुझे वहाँ बुलाया गया सेवा में। तो जब दीदी से मिलना हो रहा था, पीछे से भाइयों ने कहा कि दीदी ये भाई ने तो अपनी हड्डी हड्डी दे दी है सेवा में। तो दीदी ने कहा फिर तो फरिश्ता बन गया होगा, फिर तो दिखाई भी नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब थोड़ा और बाकी है फरिश्ता बनने में। लेकिन फिर वहाँ से ही दीदी ने मधुबन का निमंत्रण एक तरह से दे दिया और कहा जब भी तुम्हारे दिल करे मधुबन में आ जाने का। लेकिन मुझे ये था कि जो बहनें जिन्होंने मुझे वहाँ बुलाया है, जिनके साथ में रहता हूँ, वो मुझे मधुबन भेजें तो और अच्छा। तो इसलिए ऐसा करते करते दो ढाई साल वहाँ रहे और वहाँ की सेवाओं में संलग्न हुए। बीच बीच में बहनें भेज देती थी एक दो मास सेवा के लिए, तो जो सेवाओं में दो तीन मास बीच बीच में आता था मैं, तो फिक्स था भोली दादी के किचन का स्टोर संभालने का। भोली दादी का जो किचन था उस समय, जो अभी ट्रेनिंग सेंटर में के लिए जो बेडिंग पिलोज वगैरह देते हैं, वहाँ जो स्टोर है उसमें उस समय वो किचन हुआ करता था, और जो टोली वितरण केंद्र है वो छोटा सा स्टोर था। तो वहाँ मैं डेली यूज की जो चीज़ें हैं वो रखता था बड़े स्टोर से लेके, ताकि वहाँ जो भोजन बनाने वाले हैं उनको मुश्किल ना हो, हर चीज़ उनके लिए सहज अवेलेबल हो। इस प्रकार दो ढाई साल गुजर गए, और एक दिन अचानक दीदी मनमोहिनी जी का पीपी कॉल आया जयपुर में। दीदी ने कहा कि अब ये राय नहीं है, ऑर्डर है, शाम को 5 बजे ट्रेन में वहाँ से बैठोगे, सवेरे 4 बजे भूरी दादी आपको रिसीव करेगी और सीधा आ जाने का। तो जब दीदी मनमोहिनी जी ने इतना ऑर्डर कह के शब्द बोला, तो उसके बाद बहनों का तो कोई बचता नहीं है कि वो मुझे रोक सकें, क्योंकि उस समय दीदी तो राजा थे, जो कहें वो श्रीमती होती थी। तो इस प्रकार मधुबन में आना हुआ, और सबसे पूर्व में मुझे दीदी ने अपने दूध के भंडारे में सेवाएं दी। वहाँ वल्लभ भाई, राजकुमार भाई वगैरह थे, लेकिन मुझे भी वहाँ सेवा उनके साथ सेवा करने का मौका मिला। और उसमें प्लस पॉइंट ये था कि दीदी जब भी मुरली क्लास में जाते थे तो अगर लेट नहीं हुए हैं तो किचन से चक्कर लगाते हुए जाते थे, तो दीदी से मिलना होता था। इससे पहले भी जब स्टोर कीपर था तो भी दीदी किचन के स्टोर से होते के जाती थी, तो कई बार मैं स्टोर में बिजी हुआ करता था, क्योंकि वही टाइम होता था ठीक करने का, क्योंकि नाश्ता बना के भाई क्लास में चले जाते हैं और उस समय क्लास के टाइम पर आना जाना कम होता है, तो सहज समेटना हो सकता था। लेकिन कई बार मैं ऊपर चढ़ा हुआ होता था तो दीदी बोलते थे तुलसी ओम शांति, तो उनको ये रहता था कि जब दीदी आने का समय है तो मैं वहाँ उनको रिसीव करूँ। तो अच्छा, इस प्रकार से अगर मैं बाई चांस ऊपर चढ़ा हुआ हूँ तो आगे होके दीदी सिखाती थी, जैसे कि बड़े आते हैं तो हमें उनका वेलकम करना चाहिए, उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो दूध के भंडारे से भी जब दीदी गुजरती थी तो वहाँ आके ठीक हो तुलसी, अच्छा यहाँ ही मुरली सुनोगे जी दीदी। तो इस प्रकार से दीदी से रूरुआन होती रही, और दीदी की शिक्षाएं तो हमेशा आपने समझाई है सुनाई है कि दीदी संग से बचने के लिए हमेशा शिक्षाएं देती थी, क्योंकि दीदी ने कहा कि मधुबन बहुत बड़ा संगठन है और यहाँ बहुत विशेष प्रकार की सेवाएं हैं, कोई कोई सेवाएं विशेष लोग ही कर पाते हैं, चाहे वो ज्ञान में पक्के हों या ना हों, लेकिन उनका भाव होता है सेवा भाव, तो सेवा आके करते हैं। लेकिन उनकी रुचि जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान योग में रुचि रखने वाले हों, तो इसलिए थोड़ा सा अपने संभाल करने का संघ की, संग ज्ञानी तो आत्माओं का करने का। जी जी जी, इस प्रकार चलता रहा। और एक दिन अचानक मेडिटेशन हॉल से मुरली सुन के मैं उतर रहा था, तो दीदी ने सामने से बुलाया और कहा कि तुम्हें 10 बजे दिल्ली जाना है। जी दीदी, दिल्ली जाना है। तो पूछा कि आपके पास बिस्तर है, कपड़े वगैरह ठीक हैं? जी हैं। बिस्तर नहीं है तो अच्छा मैं प्रबंध कर लेती हूँ, वहाँ माता है जिसका ऑपरेशन है, उसके साथ तुमको रहना है और अपनी तैयारी करके रख ले आओ, और आपको ओम प्रकाश भाई ट्रेन में बिठा के आएंगे और भोली दादी आपके लिए भोजन लेके आ रही है और टोली वाला आपके लिए टोली लेके आ रहा है, बिस्तर वाले भाई को मैं बोलती हूँ आपके लिए बिस्तर तैयार करें, ताकि वहाँ अगर हॉस्पिटल में सोने के लिए प्रॉपर प्रबंध नहीं हो तो आपको दिक्कत नहीं हो। जी जी, तो उस समय जब मैं गया रूम में तैयारी करने के लिए, तो कुछ भाइयों ने बोला कि ये तो फंस जाओगे तुम वहाँ, दीदी को ना कर दो। मैं बोला नहीं, मैं ना नहीं कर सकता दीदी को, दीदी का जो मेरे में भाव है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो वहाँ दिल्ली जाना हुआ। दिल्ली में गुड़गांव की एक राम प्यारी माता जी थे, उनका ब्रेस्ट कैंसर था तो उनका ऑपरेशन होना था, यही बात वहाँ भी पहुँचने के बाद हुई और माता जी से मिले। उनको उनके साथ ऑलरेडी एक माता रह रही थी, इसलिए ज़्यादा मुझे उनके साथ रहना नहीं पड़ा, लेकिन उनका भोजन आदि का ख्याल रखना, पांडवों से उनके लिए भोजन आदि ले जाना, यह सेवा माता को जरूरत थी तो वो करता रहा मैं। वहाँ भी भाई बहनों ने यही बोला कि एक बहाना है तुमको पांडवों में भेजने का, तुमको अभी यहाँ ही रहना होगा, दीदी ने बहाने इसी बहाने भेजा है, माता का ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन में तुम्हारा क्या जरूरत है। तो ठीक है, जो भी दीदी कहेंगी हम करेंगे। इस बीच में रजौरी गार्डन में एक म्यूजियम बन रहा था, कुछ विशेष लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम बनाया था उन्होंने, तो उसका उद्घाटन करने के लिए दीदी मनमोहिनी जी आए और रहे वो पांडवों में, लेकिन वहाँ से रजौरी गार्डन जाके इनॉग्रेशन करना था। तो जाते जाते दीदी ने बोला कि तुलसी अगर तुम फ्री हो तो चलो हमारे साथ, तो बैठ गए उनके साथ। और रास्ते में ही दीदी को मैंने बोला, दीदी यहाँ भाई बहन बोल रहे हैं कि तुमको इस बहाने दीदी ने पांडवों रहने के लिए भेजा है, ये एक बहाना है। तो दीदी ने कहा कि जिस दिन माता घर में आ जाए उस दिन उनको पूछने का मैं जा सकता हूँ, तो फिर उसको उसके बाद आपको किसी से पूछने की छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रेन में बैठना, पांडवों आ जाना, वापस मधुबन आ जाना। और ऐसा ही हुआ, लगभग 28 डेज के बाद माता जी घर आ गए, उनका सफल रहा ऑपरेशन वगैरह, और अब उनको इतना जरूरत नहीं था जितना वहाँ हॉस्पिटल में रहने से जरूरत थी, तो माता जी ने खुशी से छुट्टी दी और मैं भी दादी ऑलराउंडर से छुट्टी लेके वापस मधुबन आ गया। तो दीदी ने कहा उस समय कि वही अगर विश्वास रखे, दीदी को भी उनकी कहना मानता है थोड़ी, दीदी उसके साथ धोखा करेगी, तो तुमने तो एक कहने पे मान लिया और माता कितनी खुश हो गई। तुमको मालूम है मुरली में जो राम प्यारी माता का नाम आता है वो यही माता है, गुड़गांव की माताओं की जो मॉनिटर थी उस समय, बाद में वो क्लास चलाती रही, सेंटर चलाती रही, तो उनकी कितनी दुआएं मिली होंगी। ऑफकोर्स ये मैंने भी महसूस किया। उसके बाद जब दीदी एक बार कलकत्ता फेयर में गए थे, तो दादी ने मेरे से पूछा, तुम इलेक्ट्रिशियन हो मैंने सुना है। मैं बोला जी दादी। तो तुम्हारी मांग कर रहा है यहाँ जो ऑडियो विजुअल वाला भाई है, वो उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जाओगे? जी दादी। तो उनके साथ सेवा में लग गए, ऑडियो विजुअल सेवा में। और इतने में जब दीदी आई तो दीदी ने बोला, तुमको मैंने मधुबन में बुलाया था, दादी ने बुलाया था? मैं बोला दीदी आपने बुलाया था, तो मेरे पूछे बिना तुम चले गए दादी के पास? तो दादी ने कहा, तुमने हाँ जी कहा, आप बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूँ दादी को, तो दीदी ने हंसते बोला, नहीं नहीं मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ तुम वहाँ जाने में खुश हो कि नहीं। तो मधुबन में जो भी सेवा मिलती है उसमें खुशी होती है। और उसके बाद भी दीदी से कनेक्शन रहा, क्योंकि मेरे नाम की एक माता जी भी थे, तुलसी माता। तो कभी कभी दादी दीदी पहरे वाले को बोलती थी, अच्छा तुलसी को बुला के ले आओ। तो भाई मेरे पास आ जाता था, तो दीदी हंसी में बोलती, अच्छा तुम क्यों आया, मैंने तो तुमको बुलाया नहीं। दीदी पहरे वाले ने बोला था कि दीदी बुला रहे हैं। तो अच्छा मैं तो तुलसी माता के लिए बोल रहा था। तो कभी कभी दीदी नोइंगली भी ऐसे, अच्छा दीदी तुलसी का कैसा है हाल, तो उनको लगता था कि किसी बहाने तुलसी को आना चाहिए हेलो हाय करने के लिए, गुड मॉर्निंग करने के लिए, या आता नहीं है तो वैसे ही बुला लो। तो उसके बाद दीदी का पंक्चुअलिटी का बहुत विशेष गुण था, जैसे रेगुलर वैसे पंक्चुअल भी। और दीदी डायरी पेन लेके क्लास में जाती थी। तो किसी दिन लेट हो गया दीदी को क्लास में पहुंचने का, और उसका कारण ये था कि जो सवेरे का मेडिटेशन का जो गीत है वो लंबा बजा। तो दीदी ने मुझे बुलाया, तुम्हारे गीत के कारण, लंबा गीत बजने के कारण मेरा क्लास मुरली क्लास में लेट हो गया, क्योंकि उसके बाद जो जो रूटीन था वो सब लेट होता गया। तो दीदी ने इस तरह से पक्का कराया कि पंक्चुअलिटी मीन्स पंक्चुअलिटी, टाइम ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम ट्रैफिक कंट्रोल बजना चाहिए, ऐसे नहीं 10 मिनट लेट पहुंचे या 5 मिनट पहले पहुंचे बजे। तो दीदी ने पंक्चुअलिटी का गुण जैसे भर दिया किसी प्रकार से। उसके बाद किसी कभी कभी ऐसा होता था कि बिजली नहीं होती थी तो हम ट्रैफिक कंट्रोल नहीं बजा पाते थे टाइम पर। तो दीदी का था कि बैटरी वाली टेप लेके आंगन में आके बजा देने का, क्योंकि दीदी किसी को टाइम देते थे तो ये नहीं कहते थे 10:30 बजे आना, अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा ना 10:30 का उस समय आना, तो ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा नहीं तो दीदी के पास मिलने जाएंगे नहीं लोग। तो इस प्रकार से मैं सेल वाली टेप लेके आंगन में बजाते था अगर बिजली नहीं है तो, ताकि दीदी को मिलने जाने वाले उनको सही टाइम पे मिल सके। तो इस प्रकार दीदी ने पंक्चुअलिटी का गुण भी बढ़ दिया। और दीदी को मालूम चला कि मैं सिंधी लिख सकता हूँ, तो दीदी ने बोला कि जो मुरली तुम सुनते हो उसमें से विशेष पॉइंट्स निकाल के अगर तुम मुझे लिख के दोगे तो मैं उसकी सेवा करूँगी, क्योंकि जो दादियाँ हिंदी नहीं पढ़ती हैं उनको मैं पत्र लिखती हूँ तो उसमें वो डाल दूँगी। तो उसमें पतले पेपर होते थे और उसको कार्बन रखे बड़ी बॉल पेन से लिखना होता था ताकि उसकी 4-5 कॉपी निकल आए, क्योंकि उस समय जो फोटो कॉपी वगैरह का सिस्टम तो था नहीं। तो मोस्टली मैं अपने अनुसार लिखता था पॉइंट्स, कभी कभी राजू भाई टाइप करते थे क्वेश्चन आंसर, वो भी इनलैंड पेपर पे टाइप करते थे ताकि वो कार्बन रखे, ताकि वो जो पत्र लिखते थे दादियाँ तो वो तीन पेज का होता था इनलैंड पेपर, तो उसमें 2 पेज क्वेश्चन आंसर या मुरली के पॉइंट्स होते थे और 1 पेज में जो दादियों को लेटर लिखना होता था वो लिखते थे। और वो जाता था सेंटर पे, और मुझे याद है कि जब मैं सेंटर पे था तो मैंने कभी मधुबन का लेटर आता था तो वो क्वेश्चन आंसर भी पढ़ के सुनाते थे। तो इस प्रकार उसकी इम्पोर्टेंस मुझे पहले से थी, तो टाइम निकाल के 10 बजे से पहले मुझे वो दीदी को लिख के देना होता था, तो मोस्टली वो मैं कर पाता था लिख के देने का। तो दीदी उससे वो सेवा करती थी और अप्रिशिएट करती थी। दादियों में दीदियों में ये भी था कि कोई भी सेवा करता है तो उसकी उसकी पहचान बननी चाहिए, उसको उसका एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और इससे क्या उसकी उसमें और रुचि बनेगी और क्वालिटी को बढ़ाएंगे। तो ये दीदी की विशेषता थी कि जो व्यक्ति जैसा जो भी अच्छा काम करता है, जो भी अच्छा काम करता है उसको हर प्रकार से अप्रिशिएट करना, सपोर्ट करना और बीच बीच में बुला के उनको पूछना, हालचाल पूछना। तो ये दीदी की विशेषता थी। ऐसे तो सभी दादियों की थी लेकिन दीदी की विशेष रूप से विशेषता थी। तो दीदी जब योग में बैठते थे तो पता चलता था कि दीदी बाबा के साथ कितनी जुड़ी हुई हैं। उसमें के जो वाइब्रेशंस होते थे वो विशेष होते थे। अगर दीदी हिस्ट्री हॉल में योग करा रहे हैं अमृत वेले का और मैं वहाँ से पास भी होता हूँ कोई और काम के कारण, तो मेरा आपको दिल करेगा कि मैं भी हॉल में बैठ जाऊँ। इतना आकर्षण था जब दीदी मेडिटेशन कराते थे तो वाइब्रेशन जितने थे और पुल होते थे इंसान तो उस तरफ चला जाए या यो उसको भी योग में बैठने की इच्छा हो। इस प्रकार से कोई समय था कि जब मैं दूध के भंडार में सेवा करता था तो 4:45 बजे दीदी के दादी प्रकाशमणि के रूम में चाय रखनी होती थी, तो 4:45 बजे से 5 मिनट पहले मैं वहाँ से पास होता था रखने के लिए। ऐसा लगता था कि मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ, बाद में चाय ले जाऊँ। इस प्रकार से दीदी के योग करने के जो वाइब्रेशन थे या जो उस समय जो दीदी का चेहरा होता था वो बहुत इंस्पायर करने वाला होता था। और इतना ही दीदी को अमृत वेले के योग के लिए बहुत इम्पोर्टेंस थी। और किसी न किसी तरीके से दीदी आपको इंस्पायर करती थी कि आप अमृत वेले का योग मिस न करो। अभी 2 दिन पहले सरला बहन मेहसाना वाली अनुभव सुना रहे थे कि वो उनको योग के टाइम पर नींद आती थी और वो छोटी उम्र के थे तो बचपन होता ही है कि कन्याओं को नींद आए उस समय अमृत वेला मिस हो, लेकिन किसी तरीके कारण वो उसकी ड्यूटी लगी, जो बहन दीदी का ख्याल रखते थे वो कहीं बाहर भी गई तो दीदी को टैबलेट देने के लिए उसकी ड्यूटी लगा के गई कि सवेरे 4 बजे दीदी को ये बीपी की गोली देनी होती है तो आप दे देंगे। तो टाइम पे उसने दी गोली, तो दीदी ने कहा जब तुम मेरे को गोली देने के लिए टाइम पे उठ सकती हो, टाइम पे आ सकती हो, तो बाबा को याद करने के लिए टाइम पे नहीं आ सकते। तो इसी प्रकार दीदी ने उसको उस दिन के बाद इस प्रकार से शिक्षा दी कि उस दिन के बाद उसका अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ। तो दीदी कहती थी कि जब हम वो जिम्मेवारी वो सेवा समझ के करते हैं तो ये जो सवेरे का उठना है वो भी बहुत बड़ी सेवा है, स्वयं के लिए भी और विश्व के लिए भी। इस प्रकार दीदी का योग, दीदी का ज्ञान और उनको भी इंस्पायर करने वाला था। स्वयं तो दीदी विशेष थे ही थे और दीदी का हमेशा रहता था कि बड़ों से बड़ों के अनुसार पूछ के चलने का, कोई ऐसी बात है तो मुझे याद है कि कोई समय था दादी जब मुरली सुनाते थे तो एक दिन पहले शाम के टाइम पर मैं दादी के रूम में मुरली रखने जाता था ताकि वो 1 महीने का स्टॉक मेरे पास रहता था मुरलियों का, और वो शाम को मैं दादी के रूम में रखता था ताकि दादी रात को पढ़ ले और सवेरे वो मुरली सुनाए। तो जब दादी बाहर जाते थे तो मुझे लगता था कि दादी नहीं है तो मनोहर दादी सुनाएंगे या तो रतनमणि दादी सुनाएंगे, तो मुझे लगा कि मनोहर दादी को दे देता हूँ आज मुरली। तो क्योंकि दादी के रूम के सामने ही मनोहर दादी का रूम था तो दीदी ने बुलाया थोड़ी देर बाद, अच्छा मुरली किसको दोगे कल के लिए? तो मैं बोला दीदी मैं तो रख के आया मनोहर दादी के पास। क्यों? अपने आप ही रख के आ गए, वापिस ले आओ रतनमणि दादी के वहाँ रखो। तो ये दीदी को पक्का कराना था कि जो काम पूछ के करना है वो अपनी मर्जी से नहीं करना, वो हमेशा के लिए वो पूछना था तो पूछना ही था, चाहे आपको पक्का हुआ रहा है कि दीदी भी वही कहेगी जो आप कह रहे हैं या आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी अप्रूवल लेके ही करने का। तो इस प्रकार दीदी ने हमें पक्का किया डेली रूटीन में भी और खिदमत पर चलने में भी। और दीदी तो पहचान जाती थी, परख शक्ति थी, समझो आपको किसी ने गिफ्ट दी है या कुछ पहनावा आपका अलग प्रकार का है तो दीदी दूर से चाल से पढ़ लेते थे कि ये कोई, तो पूछ लेते थे ये किसने दिया तुमको। मुझे याद है कि जब मैं मधुबन में आने के बाद पहली बार जयपुर वापस गया कोई काम से तो वहाँ की जो बहन थी उन्होंने डायरी पेन दिया सौगात के रूप में क्योंकि मैं वहाँ रह के आया था। तो जब वापस आया तो दीदी ने पूछा अच्छा तुम्हारी बहन ने कुछ दिया नहीं तुमको? हाँ दिया ना दीदी, राइट डायरी पेन दिया। अच्छा अभी तक तुम्हारे पास ही है वो डायरी पेन, ले के आओ। तो डायरी पेन लेके आया, दीदी ने लच्छू दादी को बोला बहुत अच्छी डायरी लेके आओ, और वो मेरी डायरी अपने पास रख ली, और जो लच्छू दादी ने डायरी लेके आए वो अच्छी थी ऑफकोर्स, वो मुझे दी, ये तुम्हें बहन की याद नहीं आनी चाहिए, ये यज्ञ की डायरी दी, इसमें लिखोगे तो बाबा की याद आएगी। तो इस प्रकार दीदी ने पक्की करी शिक्षाएं, हर चीज पक्की कराई कि किसी की किसी भी देहदारी में कोई भी कारण से हम अटके नहीं कहीं भी, या हमें पुल नहीं हो उसी का। तो ये रहा दीदी के साथ साथ, तो मैं थोड़ा ऑडिशन करता हूँ दादी प्रकाशमणि के साथ, और ड्रामा अनुसार जितना दीदी और दादी आपस में संलग्न थे, एक होकर चले, वो ड्रामा अनुसार जुलाई में दीदी का मास है तो अगस्त में दादी का है, तो इसलिए ये भी साथ साथ हो रहा है। तो दादी की विशेषताएं तो अपने आप में थोड़ा सा विशाल थी दादी, क्योंकि सेवाओं में जो विशालता आई है वो दादी प्रकाशमणि ने लाई। ऑफकोर्स दीदी मनमोहिनी अपनी फाउंडिंग जो पिलर्स हैं उनको मजबूत करके गए, और दादी ने फिर उनको विशाल सेवा में लगाया, और जितना जितना बहुत सारे अभी मैं तो समझता हूँ जितने अभी इंचार्ज बहने हैं सेंटरों पे, वो लगभग दादी प्रकाशमणि के समय पे आए, वो भले छोटी बच्चों के प्रोग्राम से शुरुआत हुई होगी उनकी, लेकिन दादी ने इतना प्यार दिया तो उनके पेरेंट्स ने खुशी खुशी उनको समर्पण किया, और वो भी खुशी खुशी तैयार हो गए समर्पण होकर सेवाएं करने में। तो बहुत लगभग सभी जगह जो एक्टिव बहने हैं इंचार्ज के रूप में वो दादी के समय की हैं, दीदी के समय वाले तो इधर चले गए या तो बहुत ओल्ड हैं, और उन्होंने अपनी सेवाओं को नयों के आगे आगे किया है, और वो जैसे अप्रिशिएट करके ब्लेस कर रहे होंगे। तो दादी की विशेषता थी कि ट्रस्ट था सबके ऊपर, जो भी बच्चे समर्पण हुए हैं उनके ऊपर विश्वास था, क्योंकि जब हम आए तो उस प्रकार की सेवाएं नहीं थी, या हम सेवाएं सीख के नहीं आए थे लौकिक में, जो आज सेवाएं हैं, मान लो जो अभी सेवाएं मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर के सहयोग से कर रहा हूँ, तो उस समय तो जब हम आए तो कंप्यूटर थे नहीं, लेकिन दादी ने इतना विश्वास रखा कि हम कर पाएंगे, तो हमें सेवाओं में आगे बढ़ने का कुछ क्रिएटिविटी करने का चांस दिया। और मुझे याद है कि राजीव गांधी जी आने वाले थे, उससे पहले कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो कईयों ने दादी को बोला, दादी महेंद्र कपूर आ रहे हैं और उनका पूरा तामझाम होता है, उनका साउंड सिस्टम बहुत होता है, ये होता है, तो दादी ने बोला तू सीख कर लेगा। ऐसे जब राजीव गांधी और एक बार शंकराचार्य जी आने वाले थे, तो किसी ने बोला दादी शंकराचार्य आ रहे हैं, तो दादी ने बोला शंकराचार्य भी वही बोलेगा, उसी माइक पे बोल रहे, मैं भी तो उसी माइक पे बोलती हूँ ना, तो ठीक चलता है ना, तो ऐसे उनके टाइम पे ठीक चलेगा। तो इतना विश्वास था दादी का हम बच्चों के ऊपर, और बाबा के चुने हुए रत्नों के ऊपर ऑफकोर्स। तो दादी ने चांस दिया, और दादी हमेशा कहती थी कि जहाँ अटको, तो आपकी सेवा में कोई अटक जाओ तो पूछना, नहीं तो आप चलते रहो करते रहो, ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन देते रहो भले, लेकिन हर चीज में पूछ करोगे तो मुझे तुम्हारी टेक्निकल बातें तो समझ में नहीं आती, मैं किसी और को पूछने के लिए कहूँगी, बॉम्बे से उसको बुलाओ या दिल्ली से उसको बुलाओ या अहमदाबाद से उसको बुलाओ, तो जब तक तुमको बहुत जरूरी नहीं है, किसी और का सहयोग की जरूरत नहीं है, तो करते चलो। इस प्रकार से बहुत सारे गीत हैं जो हमने अपने ही वहाँ ओम शांति भवन में या अपने पांडव भवन में ही रिकॉर्ड किए, उसके लिए हमें स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, या कोई ऐसे विशेषताओं वाले भाई बहने आए तो उनकी विशेषताओं को यूज करके हमने वहाँ ही कुछ क्रिएटिविटी शुरू की। कॉमेंट्रीज की रिकॉर्डिंग पहले बॉम्बे में कराते थे, तो उसको हमने मधुबन में शुरू किया, और कई गीत ऐसे शुरू किए। और गीत दादी विशेषता थी हमेशा अवेलेबल रहने की, जितना दादी मधुबन की संस्था की हेड थी, लेकिन दादी को मधुबन की स्टाफ के ऊपर बहुत नाज था, उनको ये था कि ये मेरा स्टाफ है, तो उनको प्यार भी उतना ही दिया दादी ने। कहीं भी हम जाते थे तो दादी परिचय भी कराती थी मधुबन वालों का, तो उस विशेषताओं को लेके कराती, भले मधुबन में उतना वो सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन जब बाहर कहीं जाते थे, दादी परिचय कराती ये मधुबन के भाई आए या बहने हैं, तो हमारी विशेषताओं को के साथ वो परिचय कराते थे। तो इस प्रकार मुझे याद है कि एक दिन 1787 में राजस्थान सम्मेलन था और ओम व्यास जी गीत गाने के लिए आए थे, तो उस समय उनको दिया गया था हर सेशन में एक गीत गाना है और उस अनुसार स्वागत में या तो एंड में गीत गाना है। तो मुझे लगा कि ये गीत जितना अच्छा है उसकी ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो आगे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ढंग की रिकॉर्डिंग तब हो पाएगी जब पूरा सेशन उनको दिया जाए। तो मेरे साथ सुरेश भाई हुआ करते थे, उनको मैंने बोला कि ये तो अलग सेशन होना चाहिए, तब जाके हमारी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ओम व्यास जी तो कॉन्फ्रेंस पूरा करके चले जाएंगे तो रिकॉर्डिंग हमारी हो नहीं पाएगी। तो बोला दादी ही केवल ऐसा कुछ कर सकती है। तो मैं गया दादी के रूम में, दादी तो बाथरूम में थे, लेकिन बाथरूम से ही दादी ने डिसीजन दे दिया मुझे कि तुम जाओ, पहले तो तुम वहाँ से जल्दी सेशन पूरा कराओगे तो लोग डाइनिंग में जाएंगे, तो डाइनिंग में पहले प्रबंध करवाओ, वहाँ हरिलाल भाई को बोलो कि जल्दी सेशन पूरा होगा तो वो सेवादारियों को तैयारी करने के लिए बोलेगा, और फिर उषाबेन के स्टेट सेक्रेटरी है उसको बोलो दादी ने कहा है सेशन जल्दी पूरा करके। उसके बाद रात्रि का सेशन 8:30 से 10 बजे तक का पूरा ओम व्यास जी को दिया जाए। तो ओम व्यास जी बहुत खुश हुए, उनको पूरा सेशन मिला, और आज तक वो ओम संध्या नाम से एक कैसेट बना हुआ है, वो सेशन का लाइव रिकॉर्डिंग है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लाइव गीत रिकॉर्डिंग में मजा आता है वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग में वो फीलिंग्स नहीं आती है। मुझे याद है कि एक गीत है, हम दुनिया नई बनाएंगे तन मन सेवा में लगाएंगे, तो वो गीत ओम शांति भवन में ही गाया गया था पहले, लेकिन बाद में स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई जो अवेलेबल है। तो मैं गायक व्यक्ति को बोला, सिंगर भाई को, कि ये गीत आपने तो ओम शांति भवन में बहुत अच्छा गाया था कि हम दुनिया नहीं बनाएंगे। तो बोला तुलसी भाई, वहाँ तो जो 2000 लोग बैठे थे वो सचमुच नई दुनिया बनाने वाले थे, तो उनकी जो वाइब्रेशंस आ रहे थे तो उसमें गीत में वो भर गए। यहाँ स्टूडियो में किसको पता है नई दुनिया क्या होती है, नया दुनिया कैसे बनाएंगे, तो उसमें फीलिंग्स आई नहीं आपको। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और वो ओम संध्या में अभी भी कई एक दो गीत हैं जो बाद में रिकॉर्ड हुए ही नहीं और आज भी बजते हैं तो खुशी होती है, और न केवल मुझे होती है लेकिन जो गाने वाले या उनको जो लेके आने वाले प्रबंधक, उन सबको बहुत खुशी होती है। तो इस प्रकार दादी का बहुत ट्रस्ट था और उतना ही अपनापन था कि वो दादी अपने दिल की बात हम लोगों से शेयर कर पाती थी। मुझे याद है कि जब 80s में दादी ने कहा कि जब 81 में मेला था दिल्ली में, जब दिल्ली वाले 12,000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो दादी क्यों नहीं कर सकते मधुबन में। तो बहुत बार कोशिश की गई कि किसी प्रकार 12,000 मधुबन में इकट्ठे हों, तो उसके लिए पीस पार्क जो अभी है वहाँ मैदान था, लेकिन होते होते डिसीजन होते होते मधुबन वालों ने कह दिया कि वो जो रोड है वो ठीक नहीं है, और अगर हम 12,000 लोगों को वहाँ प्रबंध करेंगे तो आना जाना हर चीज़ का बहुत होगा, तो रोड इतना अच्छा नहीं है। तो इतने में अटक गई बात और कैंसिल हो गया प्रोग्राम। इन दादी के मन में था कि मुझे 12,000 को बुलाना है बाबा का प्रोग्राम करने के लिए, और आखिर जब शांतिवन की जमीन मिली तो उस जमीन पर दादी की इच्छा थी कि वो 12,000 लोग बाबा की मूली सुने, और 12,000 लोगों में दादी ने बुलाया, मधुबन से प्रबंध किया गया वहाँ, और दादी ने बोला तुलसी अगर बाबा का आवाज़ यहाँ अच्छा सुनाई दिया ना 12,000 में, तो दादी हमेशा 12,000 को बुलाएगी। और सच में बाबा का मैजिक था, विश्वास था, और जब बाबा आए और दादी, मैंने एक पैराग्राफ पूरा होने के बाद ऑडियंस में जाके देखना चाहा कि कैसे मुरली सुन रही है, आवाज़ कैसा आ रहा है, तो जैसे ही स्टेयरकेस से नीचे उतरा सामने दादी जी से, दादी ने कहा तुलसी ओम शांति भवन से भी अच्छा आवाज आ रहा है। तो तो दादी खुश हुए और तब से डिसीजन हुआ कि अभी जो अगला प्रोग्राम होगा बाबा का वो कम से कम 12,000 का होगा। और आपने देखा कि इस प्रकार से डायमंड हॉल बना और बाबा 20,000 में भी बाप दादा की पदरामणी हुई और सब खुश होके जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। इस प्रकार दादी का ट्रस्ट और जो संकल्प है दादी का, भले देर हुई लेकिन संकल्प पूरा हुआ। इसी प्रकार दादी का संकल्प था कि 1,00,000 लोग आए प्रोग्राम में, नॉन बीके का हो, बीके का हो, लेकिन 1,00,000 लोगों का प्रोग्राम हो। दादी ने जो मीटिंग थी उसमें ये कहा कि दादी का संकल्प है, दादी का विचार है कि अभी कोई कुछ विशाल प्रोग्राम करें तो 1,00,000 लोगों को बुलाए, कौन इनिशिएट कर सकता है। तो सामने सरला दीदी बैठे थे अहमदाबाद के, उन्होंने कहा कि हम जिम्मेवारी लेते हैं 1,00,000 को बुलाने की गुजरात में, अहमदाबाद में पहले, सबसे पहले। तो उन्होंने प्रयास किया और 1,00,000 से भी ज़्यादा भाई बहने उन्होंने इकट्ठे किए। और दादी जब उद्घाटन करने के लिए वहाँ फंक्शन करने के लिए गई तो दादी को बहुत ही अच्छा लगा और दादी को बाबा के प्रति बहुत जो भावनाएं हैं और अच्छी बनी। और उन्होंने देखो आप हिम्मत रखते हो तो बाबा मदद करता है ना, तो ऐसे हिम्मत रखे, बाबा की मदद का अनुभव करते रहेंगे तो बाबा और आगे बढ़ाता रहेगा। इसी प्रकार दादी हम लोगों के साथ जैसे फ्रेंडशिप के रूप में रही, शेयर करती थी। मुझे याद है कि कभी कभी दादी जब फ्लाइट से जाते थे अहमदाबाद से तो एम्बेसडर कार में जाते थे, हमारे उस समय तो एम्बेसडर कार ही थी हमारे पास मधुबन में, तो कभी कभी मैं भी साथ में जाता था। मुन्नी बहन की आती थी कि एक कोई भाई हो जिसको और भाई बहनें पहचानते हों, तो इस प्रकार बीच बीच में मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला। एक बार दादी जा रहे थे, हमारी एक गाड़ी थी स्वराज मजदा 20 सीटर की, उसमें दादी जा रहे थे अहमदाबाद और मैं ओम शांति बॉन्ड की सीढ़ियाँ उतर रहा था। दादी ने गाड़ी को रुकवा दिया, तुलसी नहीं आ रहा है क्या? तो दादी की गाड़ी रुकी हुई देख के मैं फास्ट आया, क्यों तुलसी तुम नहीं आ रहे हो? तो मैं बोला मुझे बताया नहीं गया कि मुझे आना है, तो अभी 10 मिनट दादी वेट करती है तुम्हारे लिए, तैयार होके आ जाओ। तो मुझे डिपार्टमेंट में भी क्लोज करना था, वहाँ भी संभलवाना था, तो इस प्रकार 2-3 जगह जो सेट करना था भाग भाग के करके 10 मिनट से पहले मैं उन गाड़ी में बैठ पाया। तो इस प्रकार दादी, इतनी बड़ी दादी मुझे था कि एक संस्था की हेड दादी अपने पूरे ग्रुप के साथ मेरे लिए वेट कर रही है 10 मिनट, वो भी घर के बाहर गाड़ी रुक के। तो इतना दादी का प्यार हम सबके प्रति था, इतनी निर्माणता दादी की थी। कभी याद है मुझे कि ओम शांति वन की जो कंट्रोल रूम था, साउंड कंट्रोल रूम, वहाँ ऑपरेट करने के लिए जो मेरी कुर्सी थी वो ऊंची थी ताकि मैं ऑडियंस को देख पाऊँ, तो जो सिस्टम चल रहा है उसका रिएक्शन ऑडियंस में देख के समझ में आता था कि ठीक चल रहा है। तो कुर्सी एक ऊंची थी और उन दिनों जब बाप दादा आते थे तो लंबा टाइम होता था, तो जब शुरू मुरली में होती थी दादी बैठ के, फिर जब पार्टी से मिलना होता था तो दादी पांडवन जाते थे, और पूरा होने से थोड़ा समय पहले दादी आके कंट्रोल रूम में बैठते थे और देखते थे कैसा चल रहा है। और जब लास्ट में दादी, जब बाबा को विदाई देने का समय होता था तो स्टेज पर जाने का होता था, तो एक बार दादी बैठे थे तो मैंने बोला दादी आप इस कुर्सी पे आके बैठो, ये ऊंची कुर्सी है, मैं आपको इधर करके देता हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपकी हाइट, कुर्सी की हाइट कम है और मैं ऊंचा बैठा हूँ। तो दादी ने बोला नहीं नहीं, तुम उसकी ये कुर्सी तुम्हारे लिए बननी है, तो दादी इस पे नहीं बैठेगी। मैं दादी बैठिए, अच्छा है बैठिए, निश्चिंत हो जाओ। तो मैं बोला दादी आप बड़े हैं। नहीं, बड़े कौन हैं, बाबा ने हम सबको सेवाओं के लिए निमित्त बनाया है, तो मैं ये सेवा दी है दादी को, मैनेजमेंट की सेवा दी है, सबको बाबा ने चुना है ना। तो दादी की निर्माणता कहने या नोट करने योग्य थी। दादी निश्चिंत भी थे तो निर्माण भी थे, और उनकी भाषा निर्मल भी थी, हर एक को अपना बनाने की विशेषता भी थी। कोई भी हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे संत हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जहाँ भी जिनके साथ भी दादी बैठती तो फिट लगते थे उनमें, ऐसा नहीं लगता था कि दादी ऑड लग रही है, ऐसा नहीं। चाहे पॉलिटिशियन थे, उनके बीच में भी बैठते थे तो ऐसा लगता था उनके पॉलिटिशियन वालों को भी फिट हो रहे दादी, उनके साथ बातचीत करने में, उनको राय देने में दादी समर्थ है, कुछ ऑड नहीं लगता था। तो दादी की पर्सनैलिटी वैसे ही थी, और हमेशा तो दादी की मुस्कान थी, उनका फेस भी फोटोजेनिक था। हम चुपके से भी किसी कहीं कोने से भी दादी का फोटो लेते थे तो अच्छा ही आता था। अभी तक भी कई ऐसे फोटो होंगे जो चुपके से लिए होंगे और अभी तक भी यूज हो रहे हैं फोटोज। तो यहाँ इसी हॉल में मुझे याद है कि जब पहला वर्ष था तो डायमंड जुबली वर्ष मनाया, हीरक जयंती मनाई गई यहाँ पर इसी में। तो पहले पहले संतों का प्रोग्राम था और दादी को सब संतों ने इतना रेस्पेक्ट दिया, पूरा ऑनर किया, और बहुत अच्छा लग रहा था हम सबको कि दादी की तपस्या, जो 60 वर्षों की तपस्या है, उसका फल जैसे दादियों को मिल रहा है। तो बहुत एप्रिसिएशन मिला दादियों को। और उस समय दादी चंद्रमणि और दादी प्रकाशमणि यहाँ इसी स्टेज पे थे। उसके बाद हर वर्ग की कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हुआ 96 में। तो हर वर्ग की कॉन्फ्रेंस है, मुझे याद है कि एक बार महिलाओं की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो दादी उनसे मिल रहे थे, तो इजी रीति से दादी पूछ रही थी, सबको अच्छा लगा ना यहाँ का भोजन, सात्विक भोजन अच्छा लगता है ना? तो एक कोई माता ने उधर से बोल दिया, दादी भोजन फीका है। तो दादी ने, अच्छा फीका लगा भोजन, अच्छा अभी आप भोजन करने जाओगे ना लंच तो आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि दादी को विश्वास था कि जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वो किचन वाले सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जब पहुंचेंगे वो तब तक भोजन तीखा हो चुका होगा। तो इतना विश्वास था दादी को अपने स्टाफ पर। और दादी जो माताएं वहां गई होंगी और उनको मिला होगा वैसा भोजन उनकी पसंद का, तो उनको कितना खुशी हुई होगी। तो दादी, मुझे याद है ऐसे ही एक बार ओम शांति भवन का जो गार्डन है नीचे, तो सर्दी के समय में धूप में क्लास करने के लिए हम वहाँ बैठ मुरली सुन रहे थे, और मुरली में कुछ ऐसी पॉइंट आई, हलवा शब्द था, तो दादी ने बोला, बोली मुरली के बाद क्लास की टोली हलवा मिल सकता है? तो दादी को विश्वास था कि होगा। तो दो तीन भाई जो किचन के संबंध थे वहाँ मुरली में बैठते उठ के गए और बोली, दादी वहाँ सुन रही होंगी, हलवा तैयार होना शुरू हो गया और कटोरियों सहित हलवा मुरली पूरी होते होते दादी ने थोड़ा मुरली लंबा भी किया, अभी एक मुरली थी तो लंबा भी किया, और मुरली क्लास के बाद कटोरी में हलवा सबको अवेलेबल हुआ। तो इतना दादी को हम बच्चों पर विश्वास भी था, जितना हम बच्चों को दादी पर विश्वास था उतना उसे भी कहीं ज़्यादा दादियों का भी हमें बच्चों पर विश्वास था। इस प्रकार दादी का प्यार पाया हमने, और दादी कहीं बाहर जाते तो हम लोगों को लेके भी जाते थे, और कभी कभी जितनी दादी हमें शिक्षाएं देते थे उतना ही इजी भी रखते थे। कभी कभी पीस पार्क में मुरली सुनाने के लिए ले जाते, कभी गार्डन में मुरली सुनाने के लिए, कभी शांति स्तंभ पर मुरली सुनाने के लिए। तो मुझे याद है कि एक बार कुमारियों की बट्टी चल रहे थे और दादी आउटिंग के लिए बस में लेके जा रहे थे, तो बस में इजी रीति से हम लोग गीत बजा रहे थे, तो एक गीत आया, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो दादी ने वो दो तीन लाइनें पूरी हुई तो दादी ने बोला, तुलसी माइक दो। तो मुझे लगा पता नहीं दादी को क्या मन में आया है, तो डरना क्या। तो माइक्रोफोन दादी को दिया तो दादी ने बोला, अच्छा इनमें से तुम में से जो डरते हैं वो हाथ उठाओ। तो किसी ने भी डर नहीं हाथ नहीं उठाया ऑफकोर्स। तो जब बाबा के प्यार में, जब इंसान के प्यार में कोई डरते नहीं है, प्यार में ऐसे हो जाते हैं, तो हम बाबा के प्यार में कितने मग्न हैं, जो हमको क्या कर सकता है कोई दुनिया, किससे हमें डर है। इस प्रकार दादी रमणीकता से उस चीज को लिया, और हर बार जब जब हम इस प्रकार की सेवाओं में आगे बढ़ते तो दादी हमें अप्रिशिएट भी करती, और रमणीकता से दादी उस चीजों को लेती भी, औरों को भी हल्का कर देती। जैसे अभी बारिश पड़ रही है ना, तो जैसे बारिश रुकती थी तो चलो वाटरफॉल देखने चलते हैं। तो ऐसे ही कुमारियों की ट्रेनिंग में एक बार दादी लेके गए कुमारियों को वाटरफॉल देखने के लिए, और वो भी बिना किसी गाड़ी के। भीगते हो जाना है, भीगने का मजा लेते आज। तो बाद में हम पीछे से एक छोटी बस और या बस ले जीप लेके गए भाई बहने, ताकि किसी को प्रॉब्लम हो रास्ते में, तो कोई भीगना मुश्किल होता है या किसी को चोट न लग जाए, इस प्रकार से एक गाड़ी साथ में लेके गए पीछे पीछे हम लोग। और दादी ने बोला कि जो ज्यादा भीग गए हैं वो गाड़ी में बैठ जाओ। तो दादी बोलती गई तुम जाओ बैठो गाड़ी में। तो क्योंकि बहनों को तो मालूम नहीं था कि हम भीगने जा रहे हैं, तो दादी बहनों ने तो वैसे कपड़े नहीं पहने थे कि हम भीग सकें। तो दादी ने इशारा करके उनको गाड़ी में बैठने के लिए बोला, ताकि डिस्टर्बेंस भी ना हो। तो इस प्रकार से दादी एंजॉय भी करवाती रही, चाहे देश के चाहे विदेश के लोग थे, विदेशी भी भाई बहन आते तो उनकी पसंद का भोजन मिले, कोई भी ग्रुप आता है तो उनकी पसंद का उनको भोजन मिले। उससे पहले वो आए, ग्रुप आए उससे पहले बोली दादी से पूछ लेते थे कि इस प्रकार का है कि नहीं है, साउथ वाले आ रहे हैं तो उनकी पसंद के लिए हमारे पास सब चीज़ें हैं कि नहीं है, तो दादी पूछ के उसका प्रबंध पहले से करवा देते थे। लेकिन दादी को हर चीज़ का याद रहता था, कभी ये सीज़न है, ये चीज़ यहाँ से सस्ती आती है, इस चीज़ का भाव यहाँ ये चल रहा है, तो दादी बता सकते थे कि अभी दाल का भाव ये चल रहा है ना, और ये दाल यहाँ से आती है तो सस्ती पड़ती है। तो उस प्रकार दादी को हर चीज़ का पता होता था ना, और हर व्यक्ति का पता होता था कि उनकी पसंद का क्या है। इस प्रकार से दादी ने हम बच्चों को पालना दी, प्यार भी दिया, जिम्मेवार से सेवा करा के हमारा भाग्य भी बनाया। जैसे बताया कि दादी हर वर्ग से मिलती जुलती, और यूथ की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो यूथ के साथ ही दादी वैसी थी, और जब संतों के साथ दादी का मिलना होता था तो संत भाई बहने भी खुश होके जाते थे, और उनको लगता था कि दादी हमारे से आगे हैं। और किसी संत ने दादी को एश्योरेंस दिया, वायदा दिया कि दादी कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो हमारे इतने नागा साधु हैं आपके साथ हैं, कभी भी आप एक इशारा करोगे तो हमारे पूरी टीम, हमारी पूरी सेना आ जाएगी आपको मदद करने के लिए, आपको किसी भी फील्ड में आपको डरना नहीं है, ये भाई आपके साथ है ना। तो इस प्रकार से दादी की विशेषताएं हम लोगों ने अनुभव की। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
ओम शांति। भाई जी, जब पहली बार अव्यक्त बाप दादा के सामने आपने माइक रखा तो उस समय आपकी क्या फीलिंग थी, क्या अनुभव था, थोड़ा सा वो शेयर करेंगे?
जब पहली बार बाबा के सामने मैं गया माइक रखने के लिए, वैसे तो पहले गए और पहले हिस्ट्री हॉल में मैं बाबा से मिला हूँ फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, और लेकिन जो माइक रखने की बात पूछते हैं भैया, तो मेडिटेशन हॉल में मैं पहली बार माइक्रोफोन देने के लिए बाबा को गया, तो उन दिनों में आज की तरह कैमराज नहीं हुआ करते थे ना मेडिटेशन हॉल में, और वो भी बैठने का हमारा साइड में था, लेकिन जैसे गुलजार दादी आके बैठते थे तो उनका अपना एक ओरा होता था, और जब वो ट्रांस में चले जाते तो ओरा लगभग लो हो जाता था वो काफ़ी, लेकिन जब बाप दादा की पत्रा मन आज प्रवेशता होती थी तो वो ओरा बढ़ जाता था। और मेरी अपनी फीलिंग तो ये थी कि भगवान को माइक देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये भले उसके बाद में कंटिन्यू मैं वो देता रहा कई सालों तक, लेकिन एक भाग्य है कि हम बाबा भगवान को माइक्रोफोन दे। तो मुझे याद है कि माइक्रोफोन देने से पहले मैं कुर्ते से माइक को पहुँचने लगा तो उसमें कोई डस्ट वस्ट नहीं लगा हो, तो इस प्रकार से बाबा को माइक्रोफोन देने का लगा। और ऑफकोर्स जब बाबा के सामने आते हैं तो लगता है बाबा की आंख मेरी तरफ हो जाए, दृष्टि मेरी तरफ पड़ जाए, तो ड्रामा अनुसार पहले बार में ऐसा हुआ भी, बाबा ने ऐसे देखते देखते यूं भी किया, तो वह फीलिंग्स हैं। और बाबा की दृष्टि की तो एक जैसे सकाश होता है, एक जैसे भूम जैसे पावर होता है, वो महसूस हुआ तो अच्छा लगा।
भाई साहब, जब आप ओम शांति भवन बन रहा था और आपको वहां पे चोट लग गई थी, तो उस समय दादियों का, परिवार का और बाबा की जो मदद का आपको अनुभव हुआ, थोड़ा सा उसको आप सभी के सामने शेयर करें।
1986 में गोल्डन जुबली वर्ष था और संस्था की गोल्डन जुबली वर्ष मनाने के लिए फरवरी में कॉन्फ्रेंस कम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था। तो फरवरी में था, 9 फरवरी आई थिंक। तो 26 जनवरी को देशभक्ति के गीत बजा के मैं स्पीकर सिस्टम चेक कर रहा था। तो जैसे अभी ये सीलिंग है, इसके स्पीकर लगे हैं ऊपर, तो ऊपर सीलिंग के अंदर जाके वो एक बार स्पीकर सुन के चेक करना था। तो एक कोई स्पीकर में कुछ सोल्डरिंग टूट गया था, तो मैं साथ वाले भाई को बोला कि आप ये सोल्डरिंग करके लेके आओ, जब तक मैं और स्पीकर चेक करता हूँ। तो भाई सोल्डरिंग करने के लिए गया, तो मैं ऐसे और स्पीकर चेक कर रहा था। उस समय इतना अच्छा नहीं है, अभी थोड़ा अच्छा बना दिया उन्होंने चलने का। उस समय इतना अच्छा सिस्टम नहीं था वहाँ ऊपर चलने का, तो ऊपर जो आयरन रॉड होते थे उसको पकड़ के और चलना, आगे बढ़ना होता था। और जो ये जो शीट्स होती हैं वो तो केवल शो ही होती थी, जो अभी भी ओम शांति भवन में आप देखते हैं सीलिंग में शीट्स लगे हैं वो जस्ट शो ही हैं। तो एक कोई रॉड, आयरन रॉड का वेल्डिंग टूटा हुआ था, तो जैसे मैंने रॉड को पकड़ा तो आगे खिसका गई, तो मेरा बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया और शीट पे आके आओ वजन जैसे ही हुआ कि मैं तो गया। तो जैसे ही आया कि मैं तो गया, तो ऐसे दिखा मुझे बाबा बाहें पसारे। तो उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे नीचे आया, लेकिन एक जो भाई कारपेंट्री की वहाँ काम चल रहा था, उसकी सेवा में था, गुणेश्वर भाई, अभी शरीर छोड़ दिया, उन्होंने मुझे देखा वहाँ में, ऐसा एक राउंड लगा के नीचे आया। तो वो दौड़े के सीधा वहाँ डिस्पेंसरी में, जो अभी यहाँ चंद्रिका बहन डिस्पेंसरी संभालते थे, वो उस समय जॉब करते थे और एक महीने की छुट्टी लेके सेवा में आए हुए थे। उनको वो इतना दौड़ के गया कि वो बोल नहीं पाया, तो उनको पकड़ के ही लेके आया। तो उन बहन ने भी समझा कि कुछ खास होगा। तो जैसे ओम शांति भवन पहुंचे और मैं उनको गिरा हुआ दिखाई दिया, और मैं किसी भाई को बोला था, मुझे उस समय कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि पांव सुन्न हो गया है। तो मैं किसी भाई को बोला था कि थोड़ा रब करो ना, पांव सुन्न हो गया है। तो वो भाई पहुंचे, उससे पहले उन्होंने जोर से चिल्लाया उधर से कि नहीं नहीं, रब नहीं करना। तो फिर उनको लगा कि इतना ऊंचाई से कुर्सी के बैक पे गिरा है तो फ्रैक्चर हुआ ही होगा, तो वो स्ट्रेचेबल एक लकड़ी से टांग को बांध के सीधा रहे टांग, इस प्रकार से स्ट्रेचर पे लेके हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था, वो 26 जनवरी का दिन था और उसको पोलो ग्राउंड में अवार्ड मिलने वाला था फैमिली प्लानिंग के लिए, लेकिन उसको उसका नंबर आए उससे पहले उसको इमरजेंसी बुलावा आ गया। और उन्होंने देखा मैं तो चिल्ला नहीं रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ, तो बोला ग्रेव बॉय। तो उन्होंने बाद में एक्सरे लिया और एक्सरे लेते ही उन्होंने नीरज भाई साहब को फ़ोन कर दिया कि इसको तुरंत ही अहमदाबाद भेजा जाए। तो इस प्रकार अहमदाबाद भेजा गया मुझे और उसका ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन उस समय दादी भोपाल जाने वाले थे फ्लाइट से, अहमदाबाद में थे दादी, और दादी को वहाँ पता चला कि तुलसी का एक्सीडेंट हुआ है, और ड्रामा अनुसार क्या हुआ, भोपाल का फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो दादी को वापस आना पड़ा। तो दादी उस बीच में जिसका भी फोन आता था, तो दादी उनको बोलते तुलसी का शाम को ऑपरेशन होगा, उसके लिए योग करना। और दादी ने यहाँ मैसेज दिया नीरज भाई साहब को कि उसको भेजो, मैं मेहसाना में रुकती हूँ और तुलसी मेहसाना में रुके तो हम दोनों मिल लेंगे वहाँ पर। तो दादी मुझे वहाँ मेहसाना में रुक मिले, और दादी ने देखा ब्लड शर्ट वगैरह पे ब्लड लगा है, तो दादी ने बोला ये शर्ट नहीं, चेंज कर दो यहाँ ही, ताकि ब्लड देखे नहीं। तो शर्ट वगैरह चेंज करके दादी ने गुड विशेष देके भेजा, और अहमदाबाद में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन उस दिन तो नहीं हुआ, ट्रैक्शन पे रखा गया था पाँव को, और 2 दिन बाद ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन में भी उस डॉक्टर को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, क्योंकि जो ऑपरेशन उसने किया वो ऑर्थोपेडिक विंग के जो रूल्स हैं उसके विरुद्ध किया, क्योंकि जो इंस्पायर कर रहा था उनको, उसको दिखाई नहीं दिया कुछ, लेकिन उसको इंस्पायर कर रहे थे कोई कि नहीं ऐसे करो, लेकिन उसको लगा कि ये जो रूल्स हैं उसके विरुद्ध है और कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेवार होऊंगा। फाइनली उसने उसी प्रकार से जो इंस्पायरेशन मिल रहा था उसी प्रकार ऑपरेशन किया और वो सक्सेस गया। और इस बीच में दादी जी हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए, तो दादी जी ने, क्योंकि मैं तो बैठ नहीं पा रहा था, मुझे बैठने की छुट्टी नहीं थी, थोड़ा सा पलंग को ऊंचा किया गया और दादी ने झुक के गले लगा के बहुत प्यार दिया। और वहाँ भी दादी जो मधुबन से भी जो सुनाया दादी ने वहाँ, तो अच्छे अनुभव जो भी फोन आता था उनको सुनाती थी कि ब्रेव बॉय है। और इस प्रकार दादी जानकी जी उस समय मधुबन में थे, तो दादी जानकी जी से किसी ने पूछा कि दादी तुलसी इतना 3 मंजिल जैसे 24-25 फीट से ऊंचाई से गिरा और उसको इतना बड़ा फ्रैक्चर हुआ, लेकिन उसके चेहरे से क्यों नहीं लगा कि उसको इतना चोट लगा है। दादी ने उत्तर दिया कि जब संगठन में रहते हैं तो इतनी सारी बातें आती हैं, तो उसको जब व्यक्ति इजी ले लेता है तो उसकी जो बॉडी है वो भी इस प्रकार से संस्कार जैसे पड़ जाते हैं उस बॉडी में भी, कि वो इतने वो सहन कर पाती है बॉडी, तो इतना दर्द इसलिए तुलसी को नहीं हुआ। तो जो सेवाओं का दुआएं हैं या जो सेवाओं के संगठन में जो रहते रहते जो संस्कार बनते हैं उसका ये रिजल्ट है। तो सबने एप्रिसिएशन दिया और उसके बाद दादी जी का, दादी जानकी भी बेचते रहे टोली और निर्जय भाई साहब भी टोली बेचते रहे, गुलाब का फूल पैक करके बेचते रहे ताकि मेरा उमंग साहब वहाँ हॉस्पिटल में बना रहे। और 25 दिन के बाद मुझे छुट्टी मिली और मधुबन में आना हुआ। उसके बाद यहाँ एवरेल्डी हॉस्पिटल में जो रूम है वहाँ रेस्ट करने का हुआ और 2 महीने के बाद मुझे बैठने की छुट्टी मिली। तो मैं भाई को बोला कि बहुत दिनों से सनशाइन में बैठे नहीं हैं, तो थोड़ा बाहर बैठते हैं। तो बाहर शांति स्तंभ के बाहर व्हील चेयर पर भाई लेके आया, तो इतने में एक पंकजय बहन हुआ करते थे, वो फाउंडेशन के मेंबर्स बनाते थे, वो बहन ने बोला कि ऑफिस में बैठ के थोड़ा मुझे मदद करो, बैठ पा रहे हो तो मैं वहाँ बहन के ऑफिस में बैठ के लिख रहा था रिसीव्ड दिस अमाउंट। तो इतने में दादी जी वहाँ से पास हुए, तो दादी ने देखा, अरे वाह तुलसी तो यहाँ है। तो फिर कान में बोलती है कि तुम जब यहाँ बैठ सकता है तो ओम शांति बोलने क्यों नहीं अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करता, वहाँ तुमको सब मिस कर रहे हैं, यहाँ तुमको आश्रम अगर जाना हो तो बहन को क्या बोलेगा। तो दादी ने मुझे ओम शांति भवन का ग्रीन रूम है वो रहने के लिए दिया और व्हील चेयर पे भाई को बोला कि इसको वहाँ जो साउंड कंट्रोल रूम है वहाँ से लेके आओ, बाहर माइक्रोफोन देने का काम असिस्टेंट करेगा लेकिन तुम वहाँ संभालो अपना चार्ज। तो ये चीज जो थी जो हुआ उसने मुझे जो डिसेबिलिटी की फीलिंग थी कि मैं तो शायद पता नहीं अभी चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, सेवा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो डिसेबिलिटी की फीलिंग से ऊंचा उठा दिया कि मैं अभी भी डिपार्टमेंट संभाल पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो सेवाएं भी बाबा ने करवाए, दादियों की आशीर्वाद कहो या गुड विशेष करो। लेकिन इतना ही था कि दादी को मालूम था कि मुझे 3 साल में वो रॉड निकलवानी है जो रॉड वगैरह डाले थे, 21 इंच स्क्रू थे, एक रॉड था, सॉरी वायर थे, सब चीज़ें, 2 स्केल थे, प्लेट, वो सारा अंदर डाला हुआ था। तो दादी ने को याद था कि 3 साल के अंदर वो निकालने हैं। तो 3 साल पूरा होने से पहले अक्टूबर में दादी ने बोला तुमको वो निकलवाना था ना स्टील वगैरह अंदर जो लगा हुआ है, तुम ऐसा करो अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस है ना, अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस पूरी करके जाओ और फरवरी में जो कॉन्फ्रेंस है उससे पहले तुम तैयार हो जाओ, इस प्रकार का अपॉइंटमेंट लेके करके निकलवाओ। तो निकलवाने के लिए जब डॉक्टर के पास गए उस समय डॉक्टर ने बोला तुलसी उस समय तो तुम डिसेबल था, गिर गया था, तो कैसे भी ऑपरेशन हुआ, हो गया सक्सेस हो अलग बात है, लेकिन कैसा भी हुआ तुम तैयार था स्वीकार करने के लिए और चल पड़ा। अभी तुम अच्छा चल रहे हो, लेकिन जो ये निकालने के लिए उस हड्डी को पूरा घिसना पड़ेगा। हड्डी को घिस के निकालेंगे तो हो सकता है जो हड्डी फिर से टूट जाए। अभी तक तो तुम अच्छा है बोला चल रहा, तो डॉक्टर को ब्लेम नहीं करेगा, लेकिन अब भी अगर कुछ हो गए हम तो तुम बोलेगे डॉक्टर ने मुझे डिसेबल कर दिया, तो मैं ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो बड़ी मुश्किल से दादी ने उनको मनाया कि दादी का कहना माना भगवान का कहना, क्योंकि भगवान ने उनको अपनी सीट दी है साकार में, तो उन्होंने भेजा है आगे होके, हमने छुट्टी मांगी नहीं है, उन्होंने आगे होके भेजा है तो अवश्य सफल होगा। हमारी जिम्मेवारी आप केवल ऑपरेशन करो। तो वो भी फिर सफल हुआ और आज हम किसी को पता नहीं चलता कि मेरे साथ इतना हुआ भी होगा, नॉर्मल चलते फिर तो पता नहीं चलता।
भाई साहब एक पर्सनल क्वेश्चन है, हम इतना लंबे काल से आपको देखते आ रहे हैं, आपके चेहरे पर वही स्माइलिंग, वही लाइटनेस, वही साइलेंस, तो आप इस साइलेंस और हैप्पीनेस को कैसे मेंटेन रखते हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करते हो?
वैसे दादियों को हमने देखा, दादियों से हमने सीखा, दादियां कितनी निश्चिंत थी, निरहंकारी थी और उनको आगे करके खुद हल्के रहे। और जो दादियों से मैंने सीखा विशेष रूप से दादी प्रकाश मणि से, कि जो जो कर रहा है सेवा उसको एप्रिशिएट करो और आगे बढ़ने के लिए उनको गाइड करो, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करो। मुझे याद है एक बहन, जैसे हम गाड़ी में, मैंने बताया पर्सनल बातें पूछते थे दादी से, तो एक बार मैंने पूछा दादी फलानी बहन आपने यहाँ भेजा वहाँ से वापस आई, यहाँ भेजा वहाँ से वापस आई, तीसरी जगह से वापस आ गए, आप चौथी जगह कहाँ भेजोगे? तो दादी ने बोला ये उसमें उस बहन का कसूर नहीं है, उसका वो बहन तो अच्छी है ना, लेकिन उसके जो भगत हैं वो उसको पुकार रहे हैं कहीं और, तो क्योंकि वो भगत उनको वहां पुकार रहे हैं तो और जगह वो सक्सेस होगी ही नहीं, भले कितनी भी अच्छी बहन है। तो मैंने देखा ये बात सच्ची थी, तो मुझे इन्होंने देखा कि दादी ने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया, जो भी समर्पण होके आए उनको अच्छा यहाँ सेट नहीं होगा, वहाँ सेट होगा, वहाँ नहीं होगा तो वहाँ। तो दादी ने कहा कि वो बहन थोड़ी खराब है, ना वो बहन खराब है ना उस जिनके पास गई हो बहन वो खराब है, केवल मिसमैच वो भी इसलिए हैं कि क्योंकि जो उनके भगत हैं वो वहाँ पुल कर रहे हैं उस बहन को, तो और जगह वो सक्सेस होगी नहीं। तो दादी ने सबको अप्रिशिएट किया, सभी को आगे बढ़ाने की युक्तियाँ बताई, आगे बढ़ाते रहे। तो मुझे लगता है कि मोस्टली जो जो आप कह पूछ रहे हैं कि जो जो अपसेट रहते हैं व्यक्ति या जो सीनियर्स हैं वो सोचते हैं कि जो आज की देखो आजकल के बच्चे हैं ना ऐसे हैं, आप घर में भी आप देखते होंगे कभी कभी आपके मुख से निकलता होगा कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आपके पेरेंट्स भी यही बोलते थे आजकल के बच्चे ऐसे हैं। तो बच्चे तो जो नए बच्चे आएंगे ऑफकोर्स उनमें टैलेंट बहुत होगा, लेकिन आपके जैसी वैल्यूज शायद उनमें नहीं भी हो, किसी में और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो भाई बहने कहते हैं दुनिया में भी यहाँ भी कि आजकल की जनरेशन को तुलसी भाई आप नहीं हैंडल कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन ही अच्छी है और उसमें बहुत सारे टैलेंट बढ़े हुए हैं जो आज के समय में यज्ञ को आवश्यकता है, तो उनको अप्रिशिएट करो और जो भी कर रहे हैं उनको खुशी करो, आगे बढ़ाओ, चांस दो। तो जो हमने दादियों से सीखा हल्के रहना और उनको अप्रिशिएट करना, उनको आगे बढ़ने का चांस देना।